तारीख 12 दिसंबर दिन शनिवार। नमस्कार, भारत में अभिवादन स्वीकार करें समीर आत्मज मिश्र का। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्पेन दूतावास के पास हुआ चरमपंथी हमला, कई घंटे तक चली गोलीबारी, दो हमलावरों की मौत। पेरिस में चल रहे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में नहीं बन सकी आम सहमति, सम्मेलन को एक दिन के लिए बढ़ाना पड़ा आगे। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के साथ नरेंद्र मोदी आज जाएंगे वाराणसी, वाराणसी के लोगों को है उम्मीदें।
बनारसी साड़ियों का बहुत बड़ा उद्योग है यहाँ और जापान इन साड़ियों का बहुत बड़ा कदरदान है और जिस तरीके से जापानी दूतावास के लोगों ने बनारस के बुनकरों से मुलाकात की है।
अखबारों की समीक्षा के अलावा सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार अजय शर्मा से। तालिबान लड़ाकों ने अफगानिस्तान में एक ऐसे गेस्ट हाउस को अपना निशाना बनाया है जहां विदेशी मेहमान आकर ठहरते हैं। ये गेस्ट हाउस काबुल के दूतावासों के इलाके में है। हमले में स्पेन के एक सिपाही की मौत हो गई है। शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया है कि स्पेन का दूतावास ही हमले का निशाना बना, लेकिन स्पेन के अधिकारियों ने इससे इनकार किया। स्पेन के प्रधानमंत्री मारियानो राखोए ने पुलिस वाले की मौत की पुष्टि की। स्पेन के गृह मंत्रालय ने सूचना दी है कि हमले में एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई है। हम यहां से उसके और उसके साथियों के लिए अपना प्रेम और स्नेह भेज रहे हैं। ये थे स्पेन के प्रधानमंत्री मारियानो राखोए के शब्द। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने विपक्षी गुटों से बातचीत की संभावना से साफ इनकार किया है। ये गुट इस सप्ताह एक साझा रणनीति तैयार करने के लिए सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मिले थे। असद ने इन्हें आतंकवादी और पश्चिमी ताकतों का पिट्ठू बताया। इससे पहले अमरीका ने रियाद में हुई मुलाकात और बातचीत को शांति वार्ता के लिए पहला अहम कदम बताया था। विपक्षी गुटों ने कहा था कि किसी कार्यवाहक सरकार बनने की स्थिति में असद को सत्ता से हटना होगा। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने मंगलवार को मास्को जा रहे हैं जहाँ वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन से मिलेंगे। स्पेन में पुलिस का कहना है कि उन्होंने एक व्यक्ति को मालागा में उसके घर से पकड़ा है जिसके बारे में संदेह है कि वो यूरोप का सबसे बड़ा ड्रग माफिया सरगना है। पुलिस का कहना था कि रॉबर्ट डावेस को नवंबर में पकड़ा गया था, लेकिन इस बात को अब तक इसलिए जाहिर नहीं किया गया क्योंकि इस मामले में छानबीन जारी थी। पुलिस का कहना था कि डावोस यूरोप के सबसे बड़े अपराधी गुट का सरगना है जो दक्षिण अमरीका से कोकीन और तुर्की और अफगानिस्तान से हेरोइन की तस्करी करता है और हवाला और हत्या जैसे अपराधों में शामिल है। चीन की इंटरनेट कंपनी अलीबाबा ने हांगकांग के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को खरीद लिया है। इससे ये डर पैदा हो गया है कि अखबार की निष्पक्षता पर इसका असर पड़ेगा, खासतौर पर उन खबरों से जो चीन से जुड़ी होंगी, क्योंकि चीन में मीडिया पर कई तरह की रोक हैं। हालांकि अलीबाबा के प्रमुख जोसेफ साई ने वायदा किया है कि वो एक निष्पक्ष, संतुलित और न्यायपूर्ण पत्रकारिता को बढ़ावा देंगे, मगर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिमी मीडिया चीन को एक खास चश्मे से देखता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट 1903 में शुरू हुआ था और हाल तक मलेशिया के एक व्यापारी का इस पर मालिकाना हक था। चीन के सबसे बड़े धनी व्यक्तियों में से एक ग्वांगचांग के लापता होने की खबर है। कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन के वॉरेन बफेट के नाम से चर्चित अरबपति व्यवसायी ग्वांगचांग को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एक चीनी पत्रिका काइशिन के अनुसार ग्वांगचांग की कंपनी फोसून इंटरनेशनल के कार्यकर्ता गुरुवार दोपहर से अपने मालिक के साथ संपर्क नहीं कर पा रहे। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कल देर शाम एक गेस्ट हाउस पर चरमपंथी हमला हुआ। यह गेस्ट हाउस स्पेन के दूतावास के पास है और शुरू में ऐसी रिपोर्टें आईं कि हमले का निशाना दूतावास ही था, लेकिन बाद में खुद राजदूत ने इस बात से इनकार कर दिया। हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली है। बीबीसी संवाददाताओं की रिपोर्ट सुना रहे हैं फैसल मोहम्मद अली।
अभी तक जो भी मालूम हुआ है उसके मुताबिक गेस्ट हाउस के पास एक कार बम विस्फोट हुआ है। तालिबान ने कहा है कि वो हमले के लिए जिम्मेदार हैं और उसके लड़ाके एक गेस्ट हाउस में प्रवेश कर गए हैं। चश्मदीदों का कहना था कि हमला लंबे वक्त तक जारी रहा।
همچنان تصاویر را می‌بینیم که از محل رویداد همکاران ما فرستادن و
افغانستان کے چینل 1 ٹی وی نے حملے کی خبر کچھ اس طرح بریک کی۔
دقیقاً انفجار صورت گرفت۔
خبروں کے مطابق حملہوروں نے وسفوٹکوں سے لدے واہن کو اڑا دیا اور پولیس اسٹیشن اور اسپین کے دوتاواس کے پاس موجود مکان میں گھس گئے۔ آپ اس خاص ویڈیو کلپ میں حملے کا منظر دیکھ سکتے ہیں جسے ہمارے ساتھی نے اس جگہ سے بھیجا ہے جہاں حملہ ہوا تھا۔ افغانستان کے اپ گرہ منتری ایوب سلانگی نے گھٹنا استھل کے پاس پترکاروں سے بات چیت کی۔
ایک موتر کرولا دمی ساحه ایک موتر انفجار کرده و تقریبا برقای ساحه را موقعه کرده۔
ایک ٹویوٹا کرولا کار کو اس علاقے میں اڑا دیا گیا۔ جیسے ہی دھماکہ ہوا ہم نے علاقے کی لائٹ کاٹ دی اور ہمارے سرکشا بل نے علاقے کے پاس کے گھروں کی چھان بین شروع کر دی ہے۔ یہ تھے افغانستان کے اپ گرہ منتری ایوب سلانگی کے شبد۔
کابل میں چرم پنتھی حملہ ہوا ہے۔ افغانستان میں حال کے دنوں میں طالبان کے حملے پھر سے بڑھ گئے ہیں۔ ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا طالبان وہاں پھر سے مضبوط ہو رہا ہے یا پھر یہ اس کی ہتاشا کو درشاتا ہے۔ میں نے کابل میں بی بی سی پشتو کے سنواداتا سعید انور سے انہی مدوں پر بات کی اور سب سے پہلے گھٹنا کے بارے میں پوچھا۔
یہ حملہ گزشتہ رات 6 بجے شروع ہوا تھا اور رات کے تقریباً لوکل ٹائم 11 بجے تک جاری تھا۔ 10:30 بجے افغان سیکیورٹی حکام نے یہ بتایا ہے کہ جو حملہ اسپین ایمبیسی کے قریب ہوا ہے اس میں 2 حملہ آور مارے گئے ہیں اور 1 حملہ آور زخمی ہے اور سرچ آپریشن جاری ہے۔ ابھی تک اس حملے میں جانی نقصانات کے حوالے سے افغان سیکیورٹی حکام نے کوئی اطلاعات فراہم نہیں کیا ہے۔
سعید انور صاحب، کسی نے ذمہ داری لی ہے؟
طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں کئی لوگ مارے گئے ہیں، تاہم ابھی تک جانی نقصانات کی رسمی طور پر تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ طالبان نے تو بظاہر ایک فارن گیسٹ ہاؤس کا نام لے رہے ہیں، لیکن علاقے میں جو لوگ نزدیک ہیں ان کا کہنا ہے کہ حملہ اسپین ایمبیسی کے بہت ہی قریب ہے۔
سعید انور صاحب، اسپین ایمبیسی کے نزدیک حملہ ہوا ہے تو کیا خاص طور پہ اسپین کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے یا پھر یہ کیول ایک ٹیرر پھیلانے کے لیے ایسا ہے؟
ابھی تک تو واضح نہیں ہے، کیونکہ طالبان نے تو یہ نہیں کہا ہے کہ ان کا ٹارگیٹ اسپین ایمبیسی تھا۔ طالبان کا کہنا ہے کہ انہوں نے فارنرز کی ایک گیسٹ ہاؤس کو ٹارگیٹ بنایا ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سالوں میں بھی طالبان غیر ملکی افواج، غیر ملکی جن گیسٹ ہاؤسوں میں غیر ملکی شہری رہتے ہیں، اس طرح کے جگہوں کو جو ہائی پروفائل ٹارگیٹ ہیں ٹارگیٹ کیے ہیں۔ بظاہر طالبان کا مقصد ایک ہائی پروفائل ٹارگیٹ ہے جو انہوں نے کیا ہے، اس کے باوجود کہ گزشتہ دنوں میں کابل میں سیکیورٹی بہت سخت تھی، پھر بھی یہ حادثہ سامنے آیا ہے۔
جی، اور کیول یہی حادثہ نہیں، پچھلے 1-2 دن میں اور بھی حملے ہوئے ہیں، ادھر لگاتار خبریں آ رہی ہیں حملوں کی، تو کیا لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر طالبان مضبوط ہو رہا ہے؟
جی، افغانستان میں گزشتہ سالوں میں ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے کہ سردیوں کے موسم سے پہلے طالبان کے حملوں میں ہمیشہ اضافہ رہا ہے۔ افغانستان میں تجزیہ کاروں کا کہنا یہ ہے کہ اب جب کہ سردی آ رہی ہے تو طالبان اپنے آخری کوششیں کر رہے ہیں کہ اپنے حملوں میں تیزی لائیں، اور دوسری جانب افغان صدر کے اسلام آباد کے دورے کے بعد طالبان کے ساتھ پیس ٹاکس کا پھر بات سامنے آ رہا ہے۔ تو یہاں تجزیہ نگاروں کا خیال یہ ہے کہ طالبان ہمیشہ پیس ٹاک شروع کرنے سے پہلے حملوں میں تیزی لاتے ہیں، اور اس طرح وہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ ابھی بھی مضبوط ہیں۔
یہ تھے کابل سے بی بی سی پشتو کے سنواداتا سعید انور۔ اور اب بات فرانس کی، جہاں راجدھانی پیرس میں جلوایو پریورتن سمیلن میں دنیا بھر کے نیتا پریاورن کو بچانے کے لیے منتھن کر رہے ہیں۔ سمیلن آج یعنی شنیوار کو ختم ہونا ہے، حالانکہ یہ شکروار کو ہی ختم ہونا تھا، لیکن سہمتی نہ بن پانے کے کارن اسے 1 دن کے لیے آگے بڑھانا پڑا، لیکن ابھی تک سمجھوتے کا مسودہ تیار نہیں ہو سکا ہے۔ ہمارے سہیوگی واتسلیہ رائے نے پیرس میں موجود بی بی سی کے پریاورن سنواداتا نوین سنگھ کھڑکا سے بات کی اور پوچھا کہ آخر گتیرودھ دور کیوں نہیں ہو پا رہا ہے۔
بات نہیں بن رہی ہے، اس لیے یہ ڈیڈ لائن بڑھ گیا ہے۔ शनिवार तक के लिए बताया गया है। और मुख्य हिसाब से जो विकसित और विकासशील देशों के बीच जो मतभिन्नता है, मतभेद है, कारण वही है। और उसमें वो कहते हैं कि हम ट्राई कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन रही है। जो विकासशील देश बता रहे हैं कि हमें विकसित देश की कैटेगरी की निम्नत रखो, हम तुम्हारी तरह कार्बन कटौती नहीं कर सकते, हमें विकास करना है। और जो उसके लिए जो डिफरेंशिएशन कहते हैं, जो भिन्नता है ना, विकसित देशों से विकासशील देश भिन्न रहने चाहते हैं, तो उसी बात पर बात नहीं बन पा रही है। और अभी अभी कुछ देर पहले भी भारतीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यही बात की कि इस मुद्दा में हमारी ये सबसे अहम मुद्दा है, लेकिन पश्चिमा देश, विकसित देश इसमें फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे। और हाल ही में अभी अभी जो मैं आ रहा हूँ एक चाइनीज नेगोशिएटर की प्रेस मीट से, वहाँ चाइनीज नेगोशिएटर ने भी यही कहा, चाइनीज वार्ताकार चीन की वार्ताकार ने भी यही कहा, तो वही बात अटका हुआ है।
ऐसे में क्या आसार दिखता है, क्या शनिवार का दिन जो आज का आखिरी दिन है इसमें कोई फॉर्मूला निकल पाएगा?
हो क्या गया है कि इसमें राजनीति कहते हैं यहाँ, वो जैसे कि आप देखिए जो अमेरिका, EU जैसे विकसित मुल्क हैं, उन्होंने एक नया गठबंधन बनाया है और उसमें वो कह रहे हैं कि काफी सारे देश, खास करके गरीब या छोटे छोटे टापू देश, वो सब आ गए हैं उस फोल्ड में, उस कैंप में 100 से ज्यादा। तो और वो कह रहे हैं 1.5 डिग्री की टारगेट होना चाहिए, अब 2 डिग्री से भी महत्वाकांक्षी। तो देखिए ये एक इसको एक स्ट्रैटेजी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, विकासशील प्रकृति में विकास कर रहे देश चीन और भारत के ऊपर दबाव डालने के लिए। और चीन और भारत ये कह रहे हैं कि हमें तो इस गठबंधन के बारे में मालूम तक नहीं, हमें इसके हमें तो न्योता तक नहीं दिया गया, पता ही नहीं इसके बारे में हमें कुछ।
लेकिन ये जो पूरा डेडलॉक है, क्या कोई पक्ष अपने रुख से जरा भी हटने को तैयार नहीं है? ये डेडलॉक आखिर टूटेगा कैसे?
वही बात है कि अपने अपनी अड़ान में लगे हुए हैं विकासशील देशों, भारत और चीन का कहना है कि भाई हम पर ये मत लगाओ, हम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि हमें विकास करना है, तुम लोगों ने कर ली। और देखिए अगर आप पश्चिमा देशों से पूछे तो वो कहते हैं कि 1992 में जो राष्ट्र संघीय अभिसंधि थी उसमें भारत और चीन को विकासोन्मुख देश की कैटेगरी में रखा गया, वो दूसरी बात है, लेकिन अभी चीन नंबर एक उत्सर्जक है, भारत तीसरा है। और अगर इन देशों के बिना तो जो क्लाइमेट डील अगर हम साइन करें भी तो उससे क्या, उसका क्या अर्थ होगा? तो देखिए दोनों ही तरफ तर्क है, तो इसीलिए बहुत जटिल है। लेकिन उसके साथ साथ अब किस तरह से राह निकाले, किस तरह से इसको ब्रेक करें, वही ट्रिक वही है। और उसमें जो आयोजक देश फ्रांस है वो अपनी डिप्लोमेसी तो यूज कर रहा है, लेकिन काफी काफी चुनौतीपूर्ण काम है ये।
तो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में आज हैं दुनिया भर के देशों को उम्मीदें कि कोई समझौते का मसौदा हो सकता है तैयार। ये थे पेरिस से BBC के पर्यावरण संवाददाता नवीन सिंह खड़का। इधर भारत में पर्यावरण प्रदूषण को लेकर चिंताएं जारी हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि वे अपने विभागों के लिए डीजल वाली गाड़ियां न खरीदें। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक NGT ने यह भी कहा है कि दिल्ली में डीजल से चलने वाली किसी नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाए। वहीं वायु प्रदूषण को लेकर जारी बहस के बीच मशहूर चिकित्सक डॉक्टर नरेश त्रेहन ने दो लोगों के फेफड़ों की तुलनात्मक तस्वीर जारी की है। इनमें से एक हिमाचल प्रदेश के एक शहर के 55 साल के व्यक्ति हैं तो दूसरे शख्स की उम्र 52 साल है और वो दिल्ली के रहने वाले हैं। तस्वीर में हिमाचल के शख्स के फेफड़े का रंग गुलाबी है तो दिल्ली के व्यक्ति के फेफड़े पर काले रंग की परत दिखती है। हमारे साथी वात्सल्य राय ने डॉक्टर त्रेहन से बात की और पूछा कि ये तस्वीरें क्या बताती हैं।
अगर जो एयर पोल्यूशन, सस्पेंडेड एयर पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर में है, वो अगर आप देखेंगे कि दे गेट इनहेल्ड इन द लंग्स, तो फिर वो डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द पिंक लंग्स टर्न्ड इनटू ब्लैक लंग्स। ये इंडिकेट ये करते हैं कि हमारी जो कंटेमिनेशन ऑफ द एयर इज सो बिग, सो मच दैट द लंग्स आर सफरिंग। जब आप देखोगे कि जैसे हिमाचल या रूरल एरिया में एयर पोल्यूशन इतनी नहीं होती तो उनके लंग्स जो है वो अफेक्टेड जो नॉर्मल होते हैं दैट इज पिंक। तो इसीलिए हमें चिंताजनक तो है ये, इसीलिए मैंने वो रिलीज भी करे थे कि देखो ये अफेक्ट हो रहा है। बाकी जो पोल्यूशन के ऊपर चर्चा हो रही थी वो थ्योरेटिकल थी।
जो लोग धूम्रपान नहीं करते हैं क्या उनके फेफड़ों पर भी इस तरह का असर?
हाँ बिल्कुल है, और जो करते हैं तो उनका डबल खराब है।
ये स्थिति बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए किस कदर खतरनाक है?
आप अगर जो बुजुर्गों को देखोगे तो ऑलरेडी उनका रिजर्व जो होता है वो ऑलरेडी कम होता है, और उसके ऊपर अगर जो हम और इंसल्ट डालेंगे तो उनके ऊपर इफेक्ट डबल होता है कि एक एम्फाइसीमा, एस्थमा, इरिटेशन, कॉफ उनके लिए ज्यादा है, क्योंकि जो एडल्ट्स हैं यंग उनके लिए भी अभी मतलब हमारे पास रेजिस्टेंस होता है और इतना अक्यूमुलेशन नहीं हुआ कि लंग्स पे इफेक्ट पड़ गया। और बच्चों के लिए खास करके बिकॉज दे आर ग्रोइंग कि उनकी जो ऑर्गन्स हैं वो अभी डेवलप हो रहे हैं, अगर जो उस पे डैमेज हो उस टाइम तो देन इट विल अफेक्ट देम फॉर लाइफ।
क्योंकि आपके पास तो पूरे भारत से लोग आते हैं, तो जो दूसरे शहर हैं खासतौर पर कानपुर है, आगरा है, पटना है, इंदौर है, यहाँ पर भी प्रदूषण का क्या ऐसा ही स्तर देखने को मिलता है सर?
देखने को तो मिलता हमें रोज है, पर हमने ये अभी मैपिंग नहीं करी थी क्योंकि ये क्राइसिस आई है, तो मैंने उसको उस पे ध्यान दिया तभी फोटोग्राफ भी ले ली। तो इसकी एक साइंटिफिक स्टडी शुरू करता हूँ मैं जिससे पता लगे कि और सिटीज में भी क्या हाल है। ट्रैफिक की वजह से ट्रक जो ऑटोमोबाइल्स जो टू व्हीलर ये मिला के ही 60% ऑफ कंटामिनेशन करते हैं, तो दिल्ली तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ना।
डॉक्टर नरेश त्रेहन से बात कर रहे थे वात्सल्य राय। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। अबे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। जापानी प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते होंगे। वो मोदी के साथ उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा भी करेंगे। मोदी और शिंजो अबे वाराणसी में होने वाली गंगा आरती में भी शरीक होंगे। सुनिए वाराणसी से रोशन कुमार की रिपोर्ट।
काशी नगरी यानी बनारस न केवल अपने मस्त मौला और फक्कड़ अंदाज के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, बल्कि इसका विस्मयकारी रूप भी लोगों को अपनी ओर खींच लाता है। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी अपने समकक्ष जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम में शरीक होने आ रहे हैं। ये ठीक ऐसा ही है कि किसी गहरे मित्र को घर पर दावत पर बुलाना। खास बात यह है कि दोनों पीएम का स्वागत न केवल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक करेंगे, बल्कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद रहकर सभी कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। बनारस के एडीएम प्रोटोकॉल ओम प्रकाश चौबे।
प्रधानमंत्री जी 15 बजे दिल्ली से चल रहे हैं और 16:20 पर इनका अराइवल वाराणसी एयरपोर्ट पर है, ताज गेटवे बोला जाता है। यहाँ पर इनका आगमन होगा, गंगा आरती देखने के लिए निकलेंगे। ठीक 19 बजे बैंकेट एंड कल्चरल प्रोग्राम होस्टेड जो है प्रधानमंत्री जी की तरफ से इसका आतिथ्य किया गया है।
वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे का आज आगमन है, और इसी आगमन को लेकर बात करते हैं वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार राजेश गुप्ता।
देखिए निश्चित तौर पे बहुत जबरदस्त फर्क और परिवर्तन आएगा काशी के लिए। बनारसी साड़ियों का बहुत बड़ा उद्योग है यहाँ, और जापान इन साड़ियों का बहुत बड़ा कदरदान है। साड़ी न कहें बल्कि हम फैब्रिक कहें। और जिस तरीके से जापानी दूतावास के लोगों ने बनारस के बुनकरों से मुलाकात की है, तो उससे इस बात को बहुत बल मिलता है कि आने वाले दिनों में बुनकरों का बहुत भला होने वाला है।
बनारस और जापान एक साथ उस वक्त सुर्खियों में शुमार हो गया जब देश के प्राचीन शहर और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस को जापान के शहर क्योटो की तर्ज पर विकसित करने का केंद्र सरकार ने फैसला लिया। दोनों प्रधानमंत्रियों का बनारस दौरा इसी फैसले को अमली जामा पहनाने की एक नई शुरुआत मानी जा रही है।
तो दो देशों के प्रधानमंत्री होंगे आज वाराणसी में। ये थे रोशन कुमार। कार्यक्रम में आगे है खेल जगत की खबरें, खेल जगत की साप्ताहिक समीक्षा, लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं अखबारों पर। हमारे साथ स्टूडियो में हैं फैसल मोहम्मद अली तमाम अखबारों के साथ। जी फैसल जी, क्या कह रहे हैं अखबार?
समीर, अखबार तो वही है जो आप अभी खबर पढ़ रहे थे कि जो ट्रिब्यूनल है दिल्ली में, उसने कहा है कि जो डीजल कार है, नई डीजल कार, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। साथ साथ एक खबर जो जिसको कि हिंदुस्तान टाइम्स ने जो है वो एक बॉक्स आइटम बनाया है जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं उनके हवाले से, कि गवर्नमेंट जो है वो स्कूलों में को जो है 15 दिनों के लिए बंद कर देगी, क्योंकि जो अभी ऑड और इवन नंबर की गाड़ी कराया समावेशम का। लेकिन जो डीजल कार की जो ये नई रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ 6 जनवरी तक रोकी गई है, उसके बाद फिर इस पर फैसला आएगा और देखा जाएगा। तो उस वो जो है बेसिकली ये खबर जो है वो सारे अखबारों में है, जैसे स्टेट्समैन कहता है नो न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ डीजल व्हीकल्स, हिंदू में दिल्ली स्कूल के बारे में जैसे मैंने बताया कि 15 दिनों के लिए बंद होगा जनवरी 1 से, जनसत्ता कह रहा हरी दिल्ली के लिए डीजल गाड़ियां नहीं, اور نو رجسٹریشن آف ان، اسی طرح سے یہ سارے اخباروں میں ہے
جی.
ایک جو دوسری خبر جو اہم ہے جس کو ہندوستان ٹائمس نے ایک لیڈ بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے فورن سیکرٹری لیول کی جو ٹاک ہے وہ جنوری سے شروع ہوگی. یہ سرتاج عزیز جو ہیں وہ پاکستان کے پردھان منتری کے جو صلاح کار ہیں ودیش معاملوں کے، انہوں نے وہاں کے پاکستان کے سنسد میں یہ بیان دے کے کہا ہے کہ جو بات چیت ہوگی اس کے لیے جو ہے وہ جنوری میں جو ہے یہ بات چیت شروع ہوگی. اس کو لے کر کے ہندو کہہ رہا ہے کہ یو ایس جو ہے وہ انڈیا کا پریشر تھا، اور اجیت ڈوال نے جو ہے یو ایس اتھارٹی سے جو اس پہ بات کی تھی، جو ہیڈلی کو جو ہے سرکاری گواہ بنایا
گیا
سلسلے میں.
جی بہت بہت دھنیواد فیصل محمد علی اخباروں کی سمیکشا کے لیے.
بی بی سی انڈیا بول.
2002 کے ہٹ اینڈ رن معاملے میں بامبے ہائی کورٹ نے سلمان خان کو سبھی آروپوں سے بری کیا. نچلی عدالت نے سلمان کو 5 سال قید کی سزا سنائی تھی. ہائی کورٹ نے کہا کہ اسے مضبوط ثبوت نہیں ملے. یہ کوئی اپنی طرح کا پہلا معاملہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ثبوت ہی پختہ نہ ہو تو عدالت کیا کرے گی؟ چوک کہاں؟ عدالت، ابھیوجن، جانچ ایجنسیاں یا پھر کہیں اور؟ اس شنیوار بی بی سی انڈیا بول کا یہی ہے وشے. مفت فون کریں شام 7:30 بجے 1811-7000 اور 1811-7001 پر.
بی بی سی انڈیا بول.
نمسکار، بھارت آپ سن رہے ہیں سمیر آتمج مشر سے، اور اب کارکرم میں چرچا کرتے ہیں کھیل جگت کی. ہفتے بھر کے دوران کھیل کی دنیا کی ہلچل سمیٹ کر لائے ہیں ہمارے ساتھی آدیش کمار گپت کھیل اور کھلاڑی میں.
کھیل اور کھلاڑی کارکرم کے ساتھ میں ہوں آدیش کمار گپت. کارکرم کی شروعات کرکٹ سے. بھارت اور پاکستان بھلے ہی ایک دوسرے کے خلاف کرکٹ سیریز کھیلنے سے بچ رہے ہوں، لیکن آئی سی سی نے کل اگلے سال بھارت میں ہونے والے 2020 وشو کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں آیوجت ہونے والے میچوں کی تاریخوں اور جگہ کا اعلان کر دیا. بھارت اور پاکستان 19 مارچ کو دھرم شالہ میں آمنے سامنے ہوں گے، جبکہ ٹورنامنٹ کا آغاز 8 مارچ کو ہوگا. فائنل مقابلہ 3 اپریل کو کولکاتہ کے ایڈن گارڈنز میں کھیلا جائے گا. بھارت سپر 10 کے گروپ 2 میں پاکستان، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے ساتھ شامل ہے. وہیں سپر 10 گروپ 1 میں سری لنکا، دکشن افریقہ، ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ شامل ہیں. اس کے علاوہ پہلے دور کے مقابلوں کے لیے گروپ اے میں بنگلہ دیش، نیدرلینڈز، آئرلینڈ اور عمان ہیں، تو گروپ بی میں زمبابوے، اسکاٹ لینڈ، ہانگ کانگ اور افغانستان شامل ہے. دونوں گروپوں کی شیرش ٹیمیں اگلے راؤنڈ میں ہونے والے سپر 10 میں جگہ بنائے گی. وہیں ہوبارٹ میں آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے بیچ پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے، جہاں کل دوسرے دن کا کھیل سماپت ہونے کے سمے ویسٹ انڈیز نے 6 وکٹ کھو کر 207 رن بنائے تھے. اس سے پہلے آسٹریلیا نے اپنی پہلی پاری 4 وکٹ پر 583 رن کے وشال اسکور پر سماپت گھوشت کی. آسٹریلیا کے ایڈم وجس نے ناباد 269 اور شان مارش نے 182 رن بنائے. ایڈم وجس اور شان مارش کے بیچ چوتھے وکٹ کے لیے 449 رنوں کی ساجھے داری بھی ہوئی. دوسری طرف اسٹم کے سمے ویسٹ انڈیز کے ڈیرن براوو 94 اور کیما روچ 23 رن بنا کر ناباد تھے، لیکن پہلی پاری کے آدھار پر ابھی بھی ویسٹ انڈیز آسٹریلیا سے 376 رن پیچھے ہے اور اس کے 4 وکٹ باقی ہیں. اور اب بات ہاکی کی. پچھلے دنوں رائے پور میں سماپت ہوئے ورلڈ ہاکی لیگ فائنلز کے فائنل کو آسٹریلیا نے بیلجیم کو 2-1 سے ہرا کر جیت لیا. میزبان بھارت نے بھی بے حد دمدار کھیل دکھاتے ہوئے دنیا کی 8 سب سے بہترین ٹیموں کے بیچ کانسے پدک کے مقابلے میں نیدرلینڈز کو کڑے سنگھرش کے بعد پینلٹی شوٹ آؤٹ میں 3-2 سے مات دی. اس سے پہلے نردھارت سمے تک دونوں ٹیمیں 5-5 سے برابری پر تھی. ایسا لمبے سمے بعد ہوا جب بھارت نے انتراشٹری استر پر کسی بڑے ٹورنامنٹ میں کوئی پدک جیتا. اس سے پہلے بھارت نے سال 1982 میں نیدرلینڈز میں آیوجت ہوئی چیمپئنز ٹرافی میں کانسے پدک جیتا تھا. بھارت کی اس کامیابی سے گدگد بھارت کے کپتان سردار سنگھ کہتے ہیں،
اچھا لگ رہا ہے کیونکہ 32 کے 3 ایئرز کے بعد ہم نے آئی ایچ رینک کا جو میڈل جیتا. جو میچز تھے کافی ٹف رہے، بٹ جیسے پول میچز میں ہم نے نیدرلینڈ کے ساتھ جو میچ لوز کیا تھا، بٹ اس کے بعد میں کہوں گا کہ لڑکوں نے کافی اچھا کم بیک کیا، اور اسپیشلی فرسٹ 2 کوارٹر ہم ڈاؤن چل رہے تھے 2-0 کے بعد، और आपको पता है कि जो हॉलैंड की टीम है अभी उनका रैंक भी वर्ल्ड नंबर सेकंड है। तो उसके बाद लड़कों ने काफी फाइट की और जो कोचेज ने मैं बोला था स्टिक टू द प्लान थे लड़के सारे और मेंटली स्ट्रांग, जो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में कहूंगा कि काफी अच्छा रहा और लड़कों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसमें।
वैसे भारत ने वर्ल्ड लीग फाइनल्स में शुरुआत लड़खड़ाते हुए की और उसे पहले ही मुकाबले में अर्जेंटीना ने 3-0 से मात दी, लेकिन अगले मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 1-1 से बराबरी पर रोका, लेकिन इसके बाद भारत को नीदरलैंड्स ने 3-1 से हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में भारत ने ब्रिटेन को 2-1 से हराया, लेकिन सेमीफाइनल में भारत बेल्जियम से 1-0 से हार गया। अंततः कांस्य पदक की लड़ाई में भारत ने नीदरलैंड्स को हराकर अपनी खोई चमक हासिल की। और अब बात बैडमिंटन की।
That's gone long. It is victory to Tai Su Ying in the deciding game. Sina Nawal departs the Super Series finals.
दुबई में खेले जा रहे वर्ल्ड सुपर सीरीज फाइनल्स में भारत की साइना नेहवाल को चीन ताइपे की ताई जू युंग ने 16-21, 21-18, 21-14 से हरा दिया और इसके साथ ही वो टूर्नामेंट से भी बाहर हो गई। इससे पहले साइना नेहवाल ने दूसरे मुकाबले में विश्व चैंपियन स्पेन की कैरोलिना मारिन को 23-21, 9-21, 21-12 से हराया था, जबकि वो पहला मुकाबला जापान की नोजोमी ओकुहारा से 21-14, 21-6 से हार गई थी। वहीं पुरुष एकल वर्ग में भारत के के श्रीकांत भी ग्रुप बी में चीन ताइपे के चाओ तियानचेन से 32 मिनट में ही सीधे गेमों में 21-17, 21-13 से हार गए। इसके साथ ही श्रीकांत का अभियान भी समाप्त हुआ। ये उनकी लगातार तीसरी हार रही। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
और अब एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो आज रहेंगी चर्चा में।
पेरिस में जारी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आज अंतिम दिन है। उम्मीद की जा रही है कि सम्मेलन के अंतिम दिन वहां एक नए समझौते पर सदस्य देशों के हस्ताक्षर हो जाएंगे। पहले सम्मेलन को शुक्रवार को ही खत्म होना था, लेकिन नए समझौतों को लेकर अमीर और विकासशील देशों में मतभेद पैदा हो गए थे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी असम के बारपेटा से सांप्रदायिक सद्भावना यात्रा की शुरुआत करेंगे। सूबे में 5 माह में चुनाव होने हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी यात्रा के बहाने अपने प्रचार की शुरुआत करने की कोशिश कर रही है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे अपनी 3 दिनों की भारत यात्रा के बीच आज वाराणसी जाएंगे। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय चुनाव क्षेत्र है। सऊदी अरब में आज स्थानीय निकायों के चुनाव हो रहे हैं। चुनाव इस मायने में अहम है कि इसमें महिला उम्मीदवार बड़ी संख्या में मैदान में हैं। मुल्क के पूर्व शासक अब्दुल्ला ने साल 2005 में औरतों को चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शामिल होने की पहल करवाई थी। उन्होंने शूरा में भी 30 औरतों को जगह देने की पहल की थी।
इस्लामिक स्टेट की अगर बात की जाए तो अक्सर उसकी हमलों को लेकर के, चरमपंथी गतिविधियों को लेकर के चर्चा होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस्लामिक स्टेट का जो तेल कारोबार है वो $50 करोड़ का है। अगर ये खबर आप पढ़ना चाहते हैं तो आइए bbchindi.com पर। इसमें लिखा हुआ है कि अमरीकी राजस्व अधिकारी एडम शूबीन कहते हैं कि इस्लामिक स्टेट कहे जाने वाले चरमपंथी समूह ने तेल के कारोबार से करीब $50 करोड़ की कमाई की है। शुबीन ने बीबीसी को बताया कि सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को उखाड़ने के लिए लड़ाई छिड़ी हुई है, लेकिन असद सरकार ही आईएस के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। शुबीन का यह भी कहना है कि आईएस ने अपने कब्जे वाले इलाकों में बैंकों से करीब $100 करोड़ भी लूटे हैं। आप इस तरह की खबरों के लिए और ताज़ा तरीन दूसरी खबरों के लिए आ सकते हैं 24 घंटे bbchindi.com पर। और अब कार्यक्रम में विदा लेने से पहले एक नज़र प्रमुख समाचारों पर।
बीबीसी समाचार। तालिबान लड़ाकों ने अफगानिस्तान में एक ऐसे गेस्ट हाउस को अपना निशाना बनाया है जहां विदेशी मेहमान आकर ठहरते हैं। ये गेस्ट हाउस काबुल के दूतावासों के इलाके में है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने विपक्षी गुटों से बातचीत की संभावना से साफ इनकार किया है। ये गुट इस सप्ताह एक साझा रणनीति तैयार करने के लिए सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मिले थे। स्पेन में पुलिस का कहना है कि उन्होंने एक व्यक्ति को मलागा में उसके घर से पकड़ा है, जिसके बारे में संदेह है कि वो यूरोप के का सबसे बड़ा ड्रग माफिया सरगना है। चीन की इंटरनेट कंपनी अलीबाबा ने हांगकांग के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को खरीद लिया है। चीन के ही सबसे धनी व्यक्तियों में से एक ग्वांगचांग के लापता होने की खबर है। एक चीनी पत्रिका कायशीन के अनुसार ग्वांगचांग की कंपनी फोसून इंटरनेशनल के कार्यकर्ता गुरुवार दोपहर से अपने मालिक के साथ संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। क्यूबा और अमेरिका ने फैसला किया है कि वो 50 साल पहले दोनों देशों के बीच रोक दी गई डाक सेवा को फिर शुरू करेंगे। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कार्यक्रम में तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। 8 बजे विश्व भारती में आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल दीजिए अनुमति। नमस्कार।